ज्ञान पहले आचार्य है जिन्होंने मायावाद का खंडन करके भक्ति की स्थापना की। रामानुज के आचार्य थे संन्यास गुरु ब्रह्माचार्य, उनके एक विद्या गुरु है और एक शिक्षा गुरु है, एक संन्यास गुरु है। विद्या गुरु कौन है?
दरवाचार्य।
कौन से दरवाचार्य?
दरवाचार्य अद्वैत अवलंबी
अद्वैतवाद की शिक्षा देते थे। उस समय बड़े बड़े आचार्य लोगों को भी अद्वैतवाद की मायावाद की शिक्षा देते। जागाचार्य जी से राम का संबंध और तू एक विशेष बातें बदलाओ कौन बदलाएगा? पढ़ने के समय क्या क्या दो एक बात विशेष दो
अरे
तुम्हारी कवर है दे दो ना। पानी जो पानी पीता पीता पानी खींचता है वो कौन है?
सूर्य।
वो सूर्य से विकसित कौन चीज होता है?
सूर्य मुझे
इसलिए कॉपी आसम मैंने कॉपी जो पानी लेता है क मैंने सूर्य पानी को लेकर के और फिर उसने कमल को जो खिला देता है अपने किरणों से उसके समान। तो वो कहते जो कमल है कमल के समान जिनके मित्र हैं ये
अर्थ
है। तिरती मैंने उसे इसलिए वो शुद्ध हुआ। सूर्य जिसको अपनी किरणें से खिलाता है वो हुआ कमल। कमल के समान
भगवान के
भगवान सुनकर के रंग रह गया। दूसरी बात देखा जैसे ये तो बड़ा भाई वैष्णव होगा मायावाद का खंडन करेगा इसलिए इसको जान से मरवा देंगे। मारने के लिए उन्होंने कहा जैसे चलो हम जाएंगे बाहर काशी जाएंगे
जंगल
काशी जाएंगे और हमारे साथ में तुम लोग चलो। तो इनको भी लिया और भी साथ में 10-15 को लिया जो उनके मायावादी लड़के थे। बीच में जंगल में जाकर के उनकी योजना की इसे मार दिया जाए और कह दिया जाए इससे बात नहीं खा दिया किंतु रामानी के साथ में सुरेश था
उनके मसेरा भाई
गोविंद उनका मसेरा भाई उसमें वो भी था। रात में जाकर से रामानी को कहा गया तुम इसी समय में चले जाओ नहीं तो तुमको ये मार
डालेगा।
जब रामानी रात में निकल रहे वहां से बहुत दूर चले आए थे रात में निकले कोई रास्ता पता नहीं जंगल में। उसी समय लालसेन लिए हुए कोई आया वृद्धा में और उसको लेकर के एकदम वो लेकर के उनको बैंक चाचल में जा रहे थे वहां पर पहुंचा दिया। सवेरा होने जा रहा था उनको पता नहीं कि मैं कहाँ आ गया। जैसे अब तुम निकट में आ गए हो और ये कह करके झट अंतर ध्यान हो गए लालसेन सहित वो शंकर जी या तुम
दोनों
थे अंतर ध्यान हो गए। जब वो सवेरा और बात खरीदिए तो मैं अपने आराम में पहुंच गया। इस तरह से भगवान ने उनकी रक्षा की। एक समय की बात है रामानुज के जो गुरु थे उन्होंने कहा कि देखो तुमको ये मंत्र देता हूँ नारायण तुम किसी से मत कहना इस मंत्र को नहीं तो मंत्र की शक्ति हानि हो जाएगी। उन्होंने ठीक है नहीं कहूंगा ये कहा तो नहीं किंतु गुरु जी का कहना उन्होंने सुन लिया और उन्होंने नारायण मंत्र उनको दिए और कहा कि यदि ये कोई मंत्र करता है तो सब कुछ मैं कुछ दिनों के बाद में बैठी थी। मंत्र लेकर के आए और उस गांव के उस शहर के बीच में एक मकान की छत पर खड़े हो गए जहाँ पे हजारों लोग जैसे कि यहाँ पर होली गेट है ऐसे खड़े हो गए और बोले भाइयों तुम लोग जो मंत्र उच्चारण करता हूँ उसको करो और तुम लोगों को बैटिंग की गति हो और इसको सर्च में जा सकता हजार लोग जो आ रहे थे सबको सुना सुना करके उस मंत्र को वो बोलने लगे गुरु जी ने सुना गुरु जी दौड़े ही आए इसलिए क्या कर रहे तो ये मंत्र की शक्ति हानि करके जुटा रहा है इसलिए तुमको नरक जाना पड़ेगा मैंने गुरु जी मैं नरक में जाना चाहता हूँ तो लाखों लोगों का कल्याण करके जाऊंगा बस गुरु जी की रोटी बंद हो गई मैंने कहा कि कुछ यथार्थ में अच्छा जिस मैंने वो शिक्षा प्राप्त कर ली है और स्कूल अपना खोल दिया उसमें मैं जमुनाचार्य के एक गुरु भाई थे वो शुद्ध जाति के थे
हैदरपुर
वो नीच जाति के थे किंतु उन्होंने शास्त्र में इतना था देखा था जो कोई ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो शुद्ध हो कोई क्यों न हो कृष्ण का भजन करने वाला कृष्ण तत्व को जानने वाला ही गुरु शिवादित्र शिवा शास्त्र में भी ऐसा कहा गया कि किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो कृष्ण तत्व को जानने वाला जाति से ऊपर हो जाता है उसको गुरु बनाओ ब्राह्मण यदि समस्त शास्त्रों को जानता है उसकी उपलब्धि नहीं है भजन खुद नहीं करता मत गुरु बनाओ शुद्र यदि भजन करता है अब सब को जानता है उसको गुरु बना लिया उससे कल्याण इसलिए उन्होंने उनको शैल को अपना गुरु बना लिया जमुनाचार्य के गुरु भाई या उनके शिष्य इसके साथ में घर में ऋषि रोज पूजा करते वो अपनी स्त्री के साथ में इनके पास में आकर के रहने लगे उनको रहने का स्थान भी दे दिया और सारी व्यवस्था ये करते थे और स्कूल में पढ़ाते थे संस्कृत एक दिन उनकी पत्नी तले से जली भुनी हुई थी इसलिए जब पानी भर रही थी तो उस साइड उनकी स्त्री भी पानी भर रही और उसमें पानी का घड़ा जिसका ऊपर आया उसमें से उछल करके पानी जमुनाचार्य की स्त्री के घड़े में पड़ गया बस बड़ी डिग्री पानी तो फेंक ही दिया और उनको दो चार दस बातें खूब सुना शुभ्राणी होकर के आती है हम लोगों के यहाँ लज्जा नहीं आती है हर साल यहाँ पर क्यों मैं पानी करने आई उसको डांट सकता दिया तो रोटी मिल गई सैतून के यहाँ पर ही सैतून ने कहा अब हम लोग के यहाँ रहना उचित रावण उनको आदर करते हैं कि तो ये बड़ी वेट इतनी रखती है बस वो चले गए तो इन्होंने सोचा कि ऐसी स्त्री के साथ में रहना हमारा जो गुरु को भी सम्मान नहीं देता हमारा पारमार्थिक जीवन पहले है इसके बाद में संसारी जीवन बस उन्होंने बहाना बना करके क्या किया उसी समय एक और घटना हो गई एक ब्राह्मण आया रामानंद के यहाँ स्कूल में मैं आपके पास में आई हूँ भोजन नहीं किया कुछ दिनों से मैं भोजन चाहता उन्होंने आप काट से जाओ हमारे घर में भोजन बना जो आऊंगा हमारी स्त्री से मांग करके खा उन्होंने संदेश के दिया ये जा रहा है ब्राह्मण इसको खिला दिया फिर तो उस ब्राह्मण को उसने दूसरा करके खड़ा दिया नहीं खिलाया जब हुआ तो सब ये और कुछ गीता में उनकी चिंता हुई ये तो भगवत धर्म के बाद विरोध कर रही है साथ ही साथ एक दूसरे ब्राह्मण को बुला कि उसी ब्राह्मण को और आज देखो तुमको पत्र देता हूँ ये पत्र लेकर तो उसके पास नहीं जाओ उन्होंने पत्र लिखा बहन मैं तुम्हारा भैया पत्र दे रहा हूँ या बाप की तरफ से लिखा हमारे बेटे की शादी है तुम जल्दी से आ जाओ मेरी बेटी और इसके साथ में ब्राह्मण से ये न्योता भेजा रामानुज ने अपने हाथों से वैसा पत्र लिख करके नारियल और चिट्ठी में हल्दी देकर और दुर्गा घास देकर उसे बांध करके जैसा होता है निमंत्रण और निमंत्रण के साथ में उसी ब्राह्मण को कहा जाओ हमारी गृहिणी को दे दो तो वो लेकर के गया क्योंकि कहाँ से आ रहे हो उसने उसके पिता का नाम बतलाया कि तुम्हारे बाप के यहाँ से आ रहे हो
अच्छा बस उसको बड़े पलंग पर अच्छी तरह से बैठा करके पैर धो करके उसकी पूजा करके उसे अच्छी तरह से खिलाया और वो चिट्ठी खोल करके देखी तो बड़ी खुश हो गई। हमारे भैया ने और पिताजी ने बुलाया है, बड़ी खुश होकर के रामन उसकी प्रतीक्षा करने लगी और इनको खिला पिला करके वो भेज दिया। तो रामन लौट करके आए तो बड़ी प्रसन्न होकर के आज उनको प्रणाम भी किए और बोली जैसे हमारे भैया की शादी है इसलिए आप और हम दोनों चले, पर अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं विवाह के दिन आ जाऊंगा, तुम आज चली जाओ, तो मैं अपने किसी को भेज देता हूँ तुम्हारे साथ में, तुम जाओ और वहाँ पर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आ ये कह करके उसको तो भेज दिया ससुराल और उसी दिन सवेरे उठ करके घर संसार सब छोड़ दिया और छोड़ करके चल पड़े फिर जंगम में चले जहाँ उनके गुरु जी थे कौन
महापूर्ण
जमुनाचार्य, जमुनाचार्य उनके सतगुरु उनके पास में जाना चाहते थे संन्यास के लिए। जब वहाँ पर पहुँचे जब श्रीरंगम में तो देखा क्या सब लोग विमान पर अप्रकट हो गए हैं, सही छोड़ दिए हैं उनके गुरु जी और उनको लेकर के हजारों आदमी चले जा रहे हैं शादी देने के लिए। इसे में रामा जी आए, रामा जी रोने लगे जैसे मैं इनसे संन्यास लेने के लिए आज घर छोड़ करके आया और गुरु जी हमको कितनी बार बुलाए थे कि तुम आ जाओ, मैं नहीं गया और आज आया तो ये छोड़ करके चले गए रोने लगे। अरे भाई हमको दर्शन को करा दो, तो उनको नीचे उतारा गया और मट्टी पर रखा गया, उनके कपड़े थोड़े से हटा दिए गए, उन्होंने दर्शन किए, दर्शन देकर उन्होंने देखा कि उनके हाथ की उंगलियां तीन ऐसी है, इधर तो ठीक है किंतु तीन उंगली उनकी ऐसी बंद है, मैं क्या तो कोई नहीं बतला सका। तो उसी भरी सभा में उन्होंने प्रतिज्ञा की मैं जमुनाचार्य से संन्यास ले रहा हूं, बस साथ ही साथ एक उन्होंने कहा मैं अपने रीति के अनुसार में अपने पूर्व जो हमारे गुरु लोग हैं भक्ति का प्रचार किया सर्वत्र, मैं इस भक्ति का आचार और विचार का प्रचार कर साथ ही मैं ब्रह्मसूत्र के ऊपर में एक वैष्णव अपने पूर्व आचार्य के अनुसार एक हाथ से लिखूंगा जो उपनिषद वेद इत्यादि के से समर्थित होंगे प्रमाण के अनुसार में और हमारे सब संप्रदाय में वो पूज्य होगा मान्य होगा तथा ये भी हम लोग देकर के आवाज रह गई। इसीलिए ये इनको यहाँ आए और इनकी अस्थि रखी गई और इनकी हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, ये यथार्थ स्थिति बस उसी समय वहीं पर उन्होंने संन्यास लिया उनके सामने ही और संन्यास लेकर के तब वो गए श्रीरंगम में। इसके बाद में उनके बहुत से शिष्य थे बड़े बड़े ग्रंथ कम से कम तो 20-25 बहुत बड़े बड़े विद्वान, वो अपना अहंकार छोड़ करके विद्वान तो थे ही किंतु विद्या का अहंकार सब कुछ छोड़ करके एक एक शिष्य के पास में 2-2 महीने 4-4 महीने 10-10 महीने रह करके उनकी सेवा की और उनसे जो रामा जमुनाचार्य से उन्होंने सुना था सबको उन्होंने संकल्प किया सुना और सुन करके उसने हृदय धारण किया, लोगों के घर में सेवा की। इस तरह होने के बाद में तब वो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किए बिना गुरु भाइयों के, उन्होंने सुना है जब कोई नहीं सुनता है गुरु भाइयों से शिक्षा गुरु से या दीक्षा गुरु से, उनको तो दीक्षा गुरु से सुनने का समय नहीं मिला अपने गुरु भाइयों से अहंकार छोड़ करके अब छोड़ करके उनसे सीख करके साथ रहा। एक समय की बात है कि एक कौन सा धनुर्धर की विवाद बहुत सी बात है तो अब सुनाने से किया रह जाए तो बहुत बात तुम लोगों ने सुना। सुरेश ने उनके लिए ध्यान दे दी आंखें गवा दी और उनकी कृपा से फिर आंखें लौट आई। एक स्त्री उनके लिए रामानंद की सेवा करने के लिए अपने सब पितरों को भी हाथ में मैंने उसको छोड़ने की चेष्टा की और उसका भी सचित करा गया और वो जो बदमाश था वो उनका रामानुजा शिष्य बन गया। इस तरह से रामानुज में बहुत बहुत सब आश्चर्य बातें हैं, इनकी बहुत सी शिक्षाएं हैं। हम लोग किस लिए पालन करते हैं आज, किस लिए उनका ये विचार किया। रामानुज में बहुत से आचार विचार हैं जिसको हमारे प्रभुपाद ने, हमारे आचार्यों ने, जीव गोस्वामी ने उसको ग्रहण किया है। जिस प्रकार से सहिष्णु थे, किस प्रकार से अपनी जान देकर के भी अपने संप्रदाय के विचारों में, सिद्धांतों में उनकी निष्ठा थी। उन्होंने गुरु और शिष्य के संबंध में बतलाया है, गुरु उच्च कुल का होना चाहिए, शिष्य भी कैसा होना चाहिए, उच्च कुल का। गुरु को जैसे सहिष्णु है, शिष्य भी वैसे सहिष्णु हो। गुरु जी से पहले उठे और गुरु जी विश्राम करने के लिए जब रात में जब जाएं, उसके बाद में उनको सुला सुला करके सारी व्यवस्था करके तब सोए और जो साधन भजन है पूरी ठीक से करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सहिष्णु से रहे, क्रियागति सुनिश्चित हो। उनके तरफ से 40 ऐसे उपदेश हैं जो हमने पत्रिका में, भागवत पत्रिका में दिया था, जिसको प्रभुपाद ने संकलन किया था। आज के दिन में हम लोग उनके जीवन चरित्र को सुन सके वैसे ही बनने की चेष्टा करेंगे तो शुद्ध सब तो हमारे हृदय में और भक्ति आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। इसलिए रामानुज का कभी मध्वाचार्य का कभी, कभी रघुनाथ दास गोस्वामी का कभी सरूप दामोदर की, ये सब हम लोग का कहानी कहते हैं उनके विचारों को ग्रहण करने के लिए, दूसरों को सिखलाने के लिए नहीं, अपने जीवन में पालन करने के लिए। तब तो भक्ति होगी, अन्य क्या भक्ति नहीं होगी। इसलिए रामानुज का आदर्श जो हमारे लिए ग्रहणीय है, जहां तक दार्शनिक विचार इत्यादि है, आचार विचार है, इसको और उपासना क्षेत्र में हम महाप्रभु जी के विचारों को, रूप गोस्वामी के विचारों को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से आज रामानुज आचार विचार ये रामानुज माने लक्ष्मण के अवतार साधारण नहीं। अभी सर आज से नौ दुर्गा का व्यापक से आरंभ हो गया। नौ दुर्गा नौ दिन हो गए, चार दिन चार नौ दुर्गा। हमने ये पूछा एक आदमी से जो नौ दुर्गा कर रहे थे, भाई नौ दुर्गा में आज दुर्गा जी का जन्म है, न विवाह का दिन है, न क्या है आज, किस लिए नौ दुर्गा, कहीं भी तो शास्त्र में होना चाहिए, कहीं भी शास्त्र में नहीं है नौ दुर्गा का। लेकिन कहां से ये आप बता दें, लोगों का ध्यान कभी नहीं समझेगा, किसी भी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है नौ दुर्गे का। इस समय में और रामचंद्र जी जब के बल नैमिषारण्य कुंभा से जा रहे हैं, गोदावरी के तट से जा रहे हैं लंका पर विजय करने के लिए, विजयादशमी, लेकिन वहां से कहां तपक पड़ती है। दुर्गा जी का जो स्थान है वो तो ठीक है, दुर्गा जी का विचार हमारे शास्त्रों में लिखा है, उनकी उपासना की भी बात है। जो कामी पुरुषों में जो सांसारिक कामनाएं जिनके अंदर में होगी वो लोग पूजा करें और पूजा करके कामनाओं को पा करके उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स बने क्या सांसारिक, ये खबर पड़ जाएंगे। उन्होंने तीन पुत्र दिया, पुत्र मांगा देवी से और उन्हें दिया और तीनों पुत्र धुंधकारी होंगे, तीनों में कोई भी नहीं माता पिता की सेवा करेगा, तो अभी देवी की पूजा है। अरे कृष्ण की राधा जी हुई तो दुर्गा जी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक छाया है माया और एक है काया माया। काया माया मानी जोग माया, योग माया से भी मूल राधिका जी है, राधिका जी की पूजा करने से छाया इत्यादि सबकी पूजा हो जाती है। लोगों को समझ में नहीं आता, रामचंद्र जी का जन्म ये नौमी को हुआ तो नौमी के लिए नौ दुर्गा, एक से लेकर के नौ नौ तिथि तक तो ये नौ दुर्गा मनाने लगे। कौन, जिनको सांसारिक कामनाएं वासनाएं हैं। क्यों हुआ, बंगाल में कोई थे दुर्गा की पूजा करने वाले, उसने रामायण लिख दिया नया और उसमें लिख दिया रामचंद्र जी ने उसकी पूजा की थी। किस लिए, लोग तो मूर्ख होते हैं साधारण रूप में, फिर या घटान की तरफ में एक भेड़ को फेंक दिया उधर में तो सभी भेड़ चलेंगे। वैसे ही लोग जो हैं तो हम ये लिखते हैं रामचंद्र जी ने दुर्गा जी की पूजा की। कैसे पूजा की? 108 कमल रामचंद्र जी लाए और वो एक कमल से उनकी पूजा करें। पूजा करते करते अंतिम दिन में देवी जी ने उसको चुरा लिया एक को, अब एक ही कमल बाकी था और एक ही दिन की पूजा था। जब चुरा लिया तो रामचंद्र जी देख रहे हैं कि फूल कहाँ गया और दुर्गा जी के पूजा में देरी होगी। उन्होंने अपना कमल नयन है कमल कृष्णान इसलिए उसने अपने बाण से उसको निकालने की चेष्टा की और उसी से पूजा करें। इसमें दुर्गा जी ने कहा जिस समय प्रसन्न हो गई तो तुम बढ़ो कौशन। ये शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। पृथ्वीराज जी ने ऐसे झूठ मुठ को लगा दिया और लोगों ने कहा बात यही तो रामायण असली है वाल्मीकि वाला का रामायण कही गई यही बस। दुर्गा जी की पूजा आज से 250 वर्ष पहले आ रही है। 18वें संसार में जहाँ जहाँ बंगाली हैं वो धीरे धीरे पूजा करना आरंभ किया और करते 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 वहाँ पर भी वैसे वो सुअर की बलि देते हैं बकरी की बलि देते हैं अपने बेटे की तो बलि नहीं देते बलि देकर के पूजा करते हैं। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। राधा जी की यदि पूजा होगी कृष्ण की तो अपने आप सब इस समय रामायण पाठ करना चाहिए। वाल्मीकि जी रामायण है या तुलसी से ठीक है कोई भी बात नहीं तब तो हो नौ दिन दुर्गा जी की पूजा कहाँ से ले। अरे दुर्गा जी की पूजा करो धन पूजा के लिए कृष्ण ने भी भागवत में बतलाया है दुर्गा जी की पूजा अपने स्थान पर होगी किंतु लोगों को समझ नहीं। यदि सुख चाहो जीवन में तो वहां पर किसकी पूजा करो? सीता जी की रामचंद्र जी की पूजा करो राधा और कृष्ण की पूजा करो भागवत पढ़ो रामायण पढ़ो गीता पढ़ो और उसकी पूजा करो। ये तो असल पूजा है लोगों के समझ में ये सब चीजें नहीं आती। तो आप लोग यदि नवदुर्गा का करना है तो राधा जी की पूजा करो और कृष्ण की और पढ़ना है तो दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ करके श्रीमद्भागवत पढ़ो गीता पढ़ो रामचंद्र जी का रामचरितमानस पढ़ो उत्तरकांड वाला पढ़ो सुंदरकांड का पढ़ो सुंदरकांड मत पढ़ो उत्तरकांड पढ़ो। वो कामना भाषण लगा लेते हैं उसमें मेरी मनोकामना पूर्ण होगी हमको सुंदर सी काली नाक बाहर वाली हमको स्त्री मिल जाएगी हमारे पति बूढ़ा आ जाएगा ऐसे ऐसे सब कामनाओं के लिए लोग करते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति हो ऐसी उपासना होनी चाहिए जिससे कि और कोई भी जीवन में सुख न आए। अपने पति को साथ थक कर जाप से आती है कहाँ किस लिए? मानो यशोदा जी को बहुत आग्रह है बुलाने का यशोदा जी के रसोई बनाने से किसी की तृप्ति नहीं होती और उनमें शक्ति नहीं आती, दुबले पतले हो रहे हैं। इसलिए मानो यशोदा जी को लाख गर्ज है, इसलिए बुला उन गोपियों को जाने की इच्छा नहीं। हम लोग अपने पति के घर को सास को छोड़कर हम दूसरे के घर में नहीं जाती, कौन कह रहा है? ये गोपियां यहाँ राजा जी का इस भीतर की इच्छा क्या है? कब जाए, कब जाए, कब जाए, किंतु ऊपर तक आते ही हम नहीं जाएंगे। बड़ी मुश्किल से जब उनकी सास उनके पैरों में नाक रगड़ती है कि नहीं तुम नहीं जाने से यशोदा जी का माल जो है वो नहीं आएगा घर पर, उनके अलंकार और वस्त्र जो दे रहे हैं नहीं मिलेगा और हमारी सारी गलियां मर जाएंगी और हमारा बेटा भी मर जाएगा जो मैंने कहा है, इसलिए उसको भेजना जरूरी है। इसलिए बार बार आग्रह का कोशिश भेज रहे हैं और ये वहां पर जाती है। रसोई बनाना तो एक बहाना है, तो वही मैया भी बना देंगे और उसी के बहाने में कृष्ण का दर्शन करते हैं, उनसे मिलन भी होता है। इसके बाद में जब कि खाने पीने बैठते हैं तभी आंखों से मिलन होता है। इसके बाद में कृषि जब वन में जाते हैं तो शेष सीमा तक ये वहां तक भी जाती है, फिर लौट आती है। लौट आने के बाद में माला गुथना इत्यादि घर का काम करना और सूर्य पूजा के लिए फिर निकल जाती है, ये भी बहाना बना और कृष्ण से मिलती है। फिर कृष्ण के गोचारण से लौटने के पहले ही अपने घरों में लौट आती है और लौट करके फिर जब कृष्ण बंसी वादन करके जब कि ब्रज में आते हैं आवश्यकता के सहाय सायकाल में जब आवश्यकता जबकि ब्रज में प्रवेश करते हैं उसमें फिर ये कर्म हो जाती है। इसमें उनका विरह कब हुआ? विरह कब आने जाने के समय में या घर में कभी कभी वो बैठ करके उसमें भी वेणु जी जैसे संवाद उनके होते हैं और उसके महाने में कृष्ण की स्तुति होती है जो मिलन से भी अपूर्व उसमें रसा रसानंद होता है उसका आस्वादन देता है। यहाँ पर वो कह रहे हैं अंत में इसकी व्याख्या हमने कल की थी कि जैसे यदि हो सकता है ये ब्रजवासियां ब्रज की रमणियां कृष्ण को प्रकट उनके मिलने में और जिला दोनों में जो उनसे मिलती हैं उनका जो आनंद और सुख होता है। मान लिया जैसे कृष्ण कंस को मारा और कंस को मारने के बाद में इनके माता पिता छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, इन सबको ये दृढ़ धारणा है और वसुदेव जी ने इस बचाने के लिए वो केवल दे आए थे गोकुली, इसलिए कृष्ण का यहाँ रहना संभव है, रहे हैं जरूर और इनके कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव या यशुतना को अगासुर को बकासुर को यह संभाला। आज कृष्ण भी आज ही मारेंगे इसको जरूर, कैसे मालूम? जब छोटे होकर के भी असुरों से युद्ध कर रहे हैं और होकर के पीछे जब खेलते हैं तो बहुत दूर तक आखाड़े के बाहर में उसको खेल देते हैं और उस समय में रोग से वो अपने अधर अपने दांतों से अपने अधर को दबा करके रोक कर ऐसा जबकि दूसरों पर भक्तों पर देखते हैं सखाओं के प्रति या इन ब्रजवासियों के प्रति नंदवा उस समय क्या करते हैं? मुस्कुरा देते हैं। इसे देख करके कह रही हूं कि हो सकता है कि पीछे कृष्ण से हम लोगों का मिलन हो, कृष्णों से देखेंगे किंतु यह तो नहीं देख सकेंगे। गोपियों को कितना आनंद होता, हम लोगों का आनंद होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? इस बात को समझ रही हूँ, उनके अंदर में ऐसा प्रेम है जो प्रेम के द्वारा कृष्ण के इन चीजों का रूप का और सब बातों का आराधन करती हैं। हमारे अंदर में वो नहीं है, हम अपने सास और ससुर के डर से घर से निकल नहीं सकेंगे, अपने पति के डर से निकल नहीं सकेंगे, मेरे लिए संभव, हम लोगों के लिए संभव नहीं, इसलिए ये कदापि उनके जाए होगा हमें आनंद कृष्ण से मिलकर। किंतु ऐसी अभिव्यक्ति पातीय भाव से जो गोपियों की है हम लोग कभी भी नहीं करते, इसलिए वो कह रही है कि गोपियां ही पुण्यवती हैं। भूमि पुण्य यद्यपि दिगा दिगा दुख में वो विकल है, सब जगहों को शांत करने के लिए जा रहे हैं, कुमुदनी की भांति मृतक हो जाती है, किंतु सायकाल को अब आप जब भी आते हैं अभी तरफ तो चाय फिर जा रहा है, अपने अपने घर में अवसान करने पर भी कृष्ण जब आते हैं कटारियों से झरकों से कुंजों से कृष्ण काल को दर्शन करते हैं। कुछ समय में वो घर से निकलती हैं, क्यों निकलती हैं? कृष्ण को दर्शन करने के लिए। गोपियां उनको अबला किसलिए कहा? अबला का ये अर्थ अबला रहे हैं, अबला किसलिए?